نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيمان بالغيب، بليف ان انسين ورلد، ان دیکھی دنیا میں یقین رکھنا، یہ ہماری سیریز اور اس کے اندر ٹاپک کیا ہے؟ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس میں سے بھی پھر آج اگلا ٹاپک کیا ہے؟ چند مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سارے کام مختلف فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے. پہلی بات آج کی لکھیے، نوٹ کیجئے، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے عمل کے نقطے دوں گی. ظاہر ہے فرشتوں کے بارے میں جاننا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے انتظامات جب فرشتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں تو وہ کیا طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے امپاسیبل پاسیبل میں ملتا ہے. تو چند مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں ہیں. اس میں سب سے پہلا نام جبرائیل علیہ السلام کا آتا ہے. اور جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں آپ کو بھی تھوڑی سی باتیں بتا دوں گی، بٹ یہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت پہ ایک پورا لیکچر کر چکے ہیں. خبر سے ہوا تھا، آپ کو یوٹیوب پہ الگ سے جبرائیل کے نام پہ ملے گا. میرا فیوریٹ لیکچر ہے اس سیریز کا، ضرور سنیے گا. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل ہی اصل میں فرشتوں کے سردار ہیں. اور میں نے اس میں جو بات بتائی تھی اس کا ایک جملہ لے لیجئے کہ آئمہ میں سے ایک امام کا قول لکھایا تھا کہ ایمان بالغیب میں ایمان بالملائکہ کا انکلیوڈ ہونا، یعنی ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ فرشتے نہیں ہیں، یا ہم فرشتوں کو اپنے امیجینیشن سے عورتیں بنا دیں، لڑکیاں بنا دیں، ہمارا ایمان ختم. تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان بالملائکہ کی جو اہمیت ہے نا، وہ جبرائیل کی وجہ سے ہے. اب دو چار ان کے افارے میں دے دیتی ہوں، لیکن زیادہ ڈیٹیل آپ ادھر سے سنیے گا تاکہ آج کے سننے والوں کو بھی فائدہ ہو اور جو سن چکے ہیں ان کو دہرائی ہو جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، وہ معزز ترین فرشتے ہیں، سردار ہیں سارے فرشتوں کے. جبرائیل کون ہے؟ صاحب وحی، وحی لے کر آتے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام بچے کے جسم میں روح پھونکتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے پاس آئے. ہماری اسی سیریز میں ایک کبھی آپ کو ایک لیکچر نظر آئے اگر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، جس میں فرشتوں کا انبیاء کرام سے تعلق، تو وہ بھی ضرور سنیے گا. فرشتوں کا عام انسانوں سے تعلق، وہ بھی سنیے گا. فرشتوں کا کفار سے تعلق، یہ بھی سنیے گا. ہر لیکچر اپنی جگہ ایک بہت اہم لیکچر ہے. مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یہ پوری سیریز سن لیں گے وہ اپنے بچوں کو ہینڈ فل سٹوری سنانے کے قابل ہو جائیں گے. جبرائیل وہ ہیں جو ہر جنگ میں تھے، فرشتوں کی قیادت کرتے تھے. جبرائیل کون ہے؟ جو شب قدر میں جو باقی فرشتوں کو لے کر نیچے اترتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. اور بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل سب سے آخر میں فوت ہوں گے. اور جبرائیل کون ہے؟ جن کا وجود بہت بڑا، 600 پر ہیں، اور جس میں صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے پہلی دفعہ میں، جب فترۃ الوحی کے دور میں، اور دوبارہ ایک اور موقع پہ بھی. اور اس وقت ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ جیسے سارے افق پہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. اور اصل جتنے فرشتے، آج میں آپ کو سب کا تعارف دینے والی ہوں انشاءاللہ، لیکن اصل 3 فرشتوں کا نام آتا ہے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. اور اگر اس میں ہم چوتھے ملک الموت کو ڈال دیں تو ٹوٹل 4 قسم کے فرشتے ہیں، جس میں دوسرے نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ میکائیل ہے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے بعد، تو جبرائیل علیہ السلام کی شان اور اس کے ہم نے مختلف تلفظ دیکھے تھے، جبرائیل، 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 اور یہ سارا کچھ آپ جبرائیل علیہ السلام کے ٹاپک میں سن لیجئے گا. ان کا نام ایک کا روح بھی ہے. جبرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، عبداللہ جبرائیل. یہ ہر فرشتے کے نام کے ساتھ آپ کو یہی ملتا ہے. اسی طرح ہم نے اس لیکچر میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جبرائیل کا معنی عبداللہ اور میکائیل کا معنی عبیداللہ، یعنی اسی کی وہ تصغیر ہے جو کہ اس میں بنتی ہے. اب سوال یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو انبیاء کے پاس وحی کا پیغام، اور وہ ہو چکی. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جبرائیل ہیو ڈن ہز ڈیوٹی. لیکن دوسرا بڑا کام کیا ہے؟ کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے جسم میں روح ڈالتے ہیں، اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح پورے فرشتوں کے جو کام ہیں ان کو یہ لیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ پیدا کیے گئے. جنت جہنم جب بنائے گی تو اللہ نے جبرائیل کو بلا کر کہا تھا कि जाकर देखिए जन्नत कैसी और जहन्नम कैसी, वो हदीस हम उसमें सुन चुके हैं। तो उस उलमा कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहली ज़ी रूह, वैसे तो कलम बनाया ना हमने शुरू से हदीस सुनी हुई है, लेकिन ज़ी रूह चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तो इंशाल्लाह हम इनके बारे में जानने के बाद अब चलते हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िम्मेदारियों पे। इमाम कुर्तुबी ने बहुत कुछ लिखा है, अगर आप कोई रेफरेंस लेना चाहते हैं ना तो अरबिक बुक्स है। तो इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में सूरत बकरा की आयत 98 में मीकाई लफ्ज़ के 6 मुख्तलिफ तलफ़ुज़ बयान किए हैं। आप पहले मेरे से सुनिए, 6 तलफ़ुज़ दिए हैं और 6 के 6 दुरुस्त हैं। हमारा इंडिया पाकिस्तान का कल्चर क्या है कि अपने से ज़रा से मुख्तलिफ बंदे की बात को गलत कह देते हैं। तो जान जुमला याद रखिए, लोग मुख्तलिफ होते हैं, गलत नहीं होते। थोड़े इल्म के साथ आप थोड़ी सी चीज़ को जो आप सुनते हैं ना आपको वही ठीक लग रहा होता है, ज़रा उससे गलत नहीं मुख्तलिफ सुनी तो हम पहला अजम्पशन कहते हैं ये गलत है। इससे नैरो माइंडेडनेस पैदा होती है, तंग नज़री पैदा होती है। मुसलमान वसअत कल्ब वाला होता है, वो दूसरे और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए पॉजिटिव थिंकर होता है। तो 6 तलफ़ुज़ मैं बोलती हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लें, मीकाईल मीकाईल ज़रा सा लंबा करके, फिर मिकाल मिकाईल लाम की जज़म के साथ, मिकाईल और मिकाअल। अब आपको मुझे चूके रेफरेंस इसका मिल गया है तो हम इसको मान रहे हैं, फ़र्क कोई पड़ेगा इससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये तफसीर कुर्तुबी ही की आपको रिवायत से नाम दिए जा रहे हैं। कौन है हज़रत मिकाईल? साहिब अजमत फरिश्ते हैं। इनका जिक्र ख़ास तौर पे सूरत अल बकरा की आयत नंबर 98 में अल्लाह सुबहाना तला ने फरमाया, मन कान अदुवल्लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाल। अब यहाँ नोट कीजिए, मीकाईल नहीं है। अक्सर लोग जब अच्छे पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्या कहा? व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाह अदुवुल्लिल काफिरीन। जो शख्स अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों, इसके रसूलों और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो वो काफिर है, और यकीनन अल्लाह ताला काफिरों का दुश्मन है। तो क्या पता चला कि बड़े बड़े फरिश्तों में से जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम जो है पेश किया जाता है। मीकाईल अलैहिस्सलाम की जो मेन जिम्मेदारी है वो बारिश बरसाना है, और इस जिम्मेदारी के बारे में बहुत सारी अहादीस भी हैं। जैसे एक हदीस में आता है कि जब यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा कि जिब्राइल तो वो फरिश्ता है जो जिहाद और क़िताल का और अजाब का हुक्म लेकर आता है, लिहाजा ये तो हमारा दुश्मन है। अलबत्ता अगर आप मीकाईल का नाम ले लेते जो रहमत नबातात और बारिश लेकर आता है तो फिर ठीक था, फिर हम मान लेते। तो आपने यहूद की इस बात की नफ़ी ना फरमाई, जिससे मालूम होता है कि मीकाईल की वाकई यही जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में बारिश बरसाते। अगर फॉर एग्जांपल मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश के जिम्मेदार ना होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन यहूद की इस बात की तरदीद कर देते। और मैंने जिब्राइल वाले लेक्चर में ये बात बताई है, आप सबके लिए भी दोहरा देती हूँ, 4 बड़े फरिश्तों में जिब्राइल मीकाईल इसराफील और मलकुल मौत, इनमें से जिब्राइल और मीकाईल दोनों का काम क्या है? जिंदगी बख्शना। एक तो रूह डालते हैं जिब्राइल बच्चे के अंदर, वो बराह रास्त है, और मीकाईल बारिश बरसाते हैं, और बारिश पानी की है। और कुरान सूरत मोमिनून में क्या कहता है कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है। तो उलमा कहते हैं कि ये दोनों बडीज़ हैं। इसके बरक्स दूसरे दो फरिश्ते इसराफील और मलकुल मौत, वो दोनों का भी सेम काम है। हम अभी पढ़ेंगे, मीकाईल जो हैं बारिश बरसाते हैं, जिब्राइल रूह डालते हैं, तो दोनों ये ज़िंदगी बख्शने वाले फरिश्ते हैं अल्लाह के हुक्म से। जबकि मलकुल मौत हर बंदे की वन ऑन वन बेस पे रूह निकालते हैं, और जो इसराफील है वो पूरी कायनात के ऊपर जब सूर फूकेगा तो वो होगा, तो वो दोनों मौत के फरिश्ते हैं। यानी जैसे अल्लाह ताला के नाम है ना अल हई और अल कयूम, बिल्कुल इसी तरह से इसको जहन में रखिए। तो ये दूसरे बड़े फरिश्ते थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और इनकी ज़िम्मेदारियाँ। तो इसराफील अलैहिस्सलाम भी एक बड़े अजीमुल मर्तबत, यानी वेरी वेरी मेजेस्टिक, बड़े आला मर्तबे वाले फरिश्ते हैं, और इनके बारे में मारूफ है कि वो क़यामत बरपा करेंगे, फिर तमाम मुर्दों को ज़िंदा करने के लिए इन्हें एक सुर दिया जाएगा। जैसे ही आपने मेरे सामने माइक रखा हुआ है ना, तो मेरी आवाज़ को आप तक बड़ा करके पहुँचा रहे हैं ना, इसको नरसिंघा भी कहते हैं, बिगल नुमाए काला भी कहते हैं, जिसे वो अपने मुंह में लिए हुक्म इलाही के मुंतजिर हैं। आज भी इस वक्त भी इसराफील ने अपने मुंह के साथ ऐसे सुर रखा हुआ है और अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह के अर्श की तरफ नज़रें लगी, देखने से मुराद ये है यानी अल्लाह ताला की तरफ नज़रें लगाई हुई हैं। किस चीज़ के लिए? हुक्म इलाही के लिए। जब इन्हें हुक्म मिलेगा वो इसमें भूकेंगे और इससे खौफनाक किस्म की आवाज़ फैलेगी, जिसे सुनने वाला हर जीरो जो है ना वो मर जाएगा। फिर तमाम लोगों को ज़िंदा किया जाएगा, फिर वही दोबारा अल्लाह के हुक्म से इसमें फूकेंगे। और याद रखिए कि पूरे कुरान में सूर फूकने के बारे में बहुत से दलाइल हैं, कुरान में भी और सुन्नत में भी हैं। एक फरिश्ता सूर फूकने की जिम्मेदारी अदा कराएगा, कुरान में इसका नाम नहीं है, लेकिन अहादीस से और रिवायात से और बग़ैर किसी इख्तलाफ के हमारे सलफ सालेहीन से ये बात मारूफ है कि ये इसराफील ही होंगे। आप इमेजिन कीजिए, कलम हिल बसर, जो ही इसराफील ने फूकना है क़यामत आ जानी है। तो क़यामत कितनी करीब है, हमें सोचने की ज़रूरत है। अपने आप से सवाल कीजिए, अगर अचानक क़यामत आ जाए तो क्या मैं अपने रब को फेस करने के लिए तैयार हूँ? और अगर क़यामत असल नहीं भी आती तो अल्लाह के नबी की वो हदीस, ममात फ़कद कामत क़यामत हो, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। तो अगला अमल का नुक्ता लिखे, ऑलवेज अपने अकाउंट्स क्लियर रखिए, हिसाब सीधा रखिए, खाते खोल के रखिए। किसी का दिल दुखाया है, माफ़ी मांग लें। किसी का लेन देन है, जाकर हिसाब बराबर कर लीजिए, फॉरगिव फॉरगेट बन जाइए। किसी ने आपका दिल दुखाया, आप उससे नाराज़ हैं, 3 दिन से ज़्यादा हो गए बोल नहीं रहे, फ़ौरन जाके मिल लीजिए, क्योंकि एक इंसान हमेशा तैयार होता है। देखिए, एक इम्तिहान वो होता है जिसका वक्त पता होता है ना, 3 दिन बाद मैथ का पेपर है, तो बच्चों को पता होता है कि अभी 3 दिन तो है ना, पढ़ लेंगे। जो शार्प माइंडेड होते हैं वो कहते हैं लास्ट नाइट जाएंगे, रिवाइज करेंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पता ही नहीं होता, हादसा अचानक आ जाता है, बीमारी अचानक आ जाती है, तो क़यामत से बड़ा और क्या हादसा होगा? कुरान ने खुद ही उसको हादसा अजीम कहा, अम्मा यतसअलूना निन्नबइल अजीम, सूरत वाक़िया में क्या कहा, वाक़िया कहा कि अलकारिया कहा, कई गाशिया कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है, मैं कैसे बेपरवाह हो सकता हूँ जबकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर अपने मुंह में लिया हुआ है और अपनी पेशानी को झुकाया हुआ है और वो अपना कान लगाए इंतज़ार कर रहा है कि कब इसमें इसे फूकने का हुक्म मिले और वो इसमें फूक दें। ये तिरमिजी की रिवायत है, 3243 नंबर की। इसी तरह दूसरी रिवायत हाफिज़ इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में, तफसीर तबरी के नाते से नकल की, इन्ना इसराफीला, बेशक इसराफील ने सूर अपने मुंह में लिए रखा है और अपनी पेशानी को झुकाया हुआ है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन्हें इसमें फूकने का हुक्म मिलेगा और वो इसमें फूक देंगे। आपके मेरे लिए अमल की बात, जैसे फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। बानमाजी कौन है? जो वुजू करके बैठा हुआ है अजान के इंतज़ार में और अजान की आवाज़ सुनते ही मस्जिद की तरफ चल पड़ा, उससे भी ज़्यादा फारिग है अगर तो वो अजान से पहले ही मस्जिद पहुँच जाता है। तकबीरे उला मिस नहीं होती, इकामा और अजान के बीच के 2 नफिल मिस नहीं होते, और कुछ वो भी हैं जो आखिरी रकत में पहुँच के कहते हैं पढ़ तो ली थी ना। जुमे के लिए मस्जिद में जाने का लास्ट टाइम कौन सा है? जब खतीब मिंबर पे आते हैं। हमारे देसी कल्चर में वो नहीं देते टाइम, किसी से आप पूछे ना कब जुमा है तो आप कहते हैं वो जो 2 फर्ज होते हैं ना उसका टाइम बताते हैं, वो तो जुमा नहीं है, वो तो जोहर है। तो आपको पता है कि आम हालात में जोहर के 4 फर्ज है ना, और जुमे की नमाज में 2 हैं, 2 किधर गए? 2 खुतबा है, जिसका खुतबा मिस हो गया उसकी आधी नमाज चली गई, उसकी तो जोहर भी नहीं हुई। और हमारे कुछ भाई माशाल्लाह और बच्चे खुश होते हैं, चलो आम दिनों में 4 पढ़नी होती है, जुम्मे में तो 2 पढ़ेंगे, और 2 में से भी आखिरी रकत में पहुंच गए तो वो भी 2 काउंट ही हो जाने। नहीं, फरिश्तों से प्रॉम्पट रहना सीखिए। आज यहाँ बैठकर अल्लाह से एक दुआ करें, मैं कोई भी हूँ, अभी आपसे स्टूडेंट्स दावत दे रही थी आप नूर कुरान से जुड़े, ये करें, मैं तो कहती हूँ कि आप कुरान से जुड़ जाए, अल्लाह से जुड़ने नूर खुद ही आएगा। लेकिन वाकई हम कुरान पढ़ाते वक्त इस चीज़ पे फोकस करते हैं। हर कोर्स नूर कुरान के प्लेटफॉर्म पे, छोटा बड़ा, शॉर्ट कोर्स, लॉन्ग कोर्स, तफसीर कोर्स, हदीस कोर्स हो, एडवांस कोर्स हो, टीचर ट्रेनिंग हो, एक चीज़ जिसे मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वो सेल्फ ग्रूमिंग है। वट इट्स इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है? अब हम इसराफील को जान ले, जिब्राइल को जान ले, हम उठ के क्या करें? अब हम तो नहीं सूर में फूकेंगे, हम तो बारिश नहीं बरसाएंगे, तो फरिश्तों वाली खूबियाँ पैदा करनी है इंशाल्लाह। इसी तरह सूरत अल-अनाम की आयत 73 की तफसीर में हाफिज़ इब्ने कसीर फरमाते हैं, बल सहीहु अन्नल मुराद बिस्सुवर अल-क़रन अल्लज़ी युन्फ़खु फ़ीही इसराफ़ील अलैहि सलाम। सही बात यह है कि सूर से मुराद वो नरसिंघा, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इसराफ़ील अलैहि सलाम भूकेंगे। यानी सूर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट जो इसराफ़ील के हाथ में है, और ये तफसीर इब्ने कसीर में आप रिवायत देख सकते हैं। फिर इसी तरह कुरान पाक में बहुत तज़किरा है, मसलन सूरत ज़ुमर की आखिर में है आयत 68-69, वनुफ़िख़ फ़ि सूर फ़साइक़ मन फ़ि समावाति व मन फ़ि अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह। और सूर फूंक दिया जाएगा, बस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर मर जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, बस वे एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। और इसके बाद अगला मंजर बड़ा ही खूबसूरत है, और वो क्या है? इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफिख़ फ़ीही उख़्रा फ़ैज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरूना वशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा वबुदियल किताबु वजीअ बिन्नबीयीन वश्शुहदा वश्शुहदाई वकुदिया बैनहुम बिलहक वहुम ला युज़लमून। और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी, नामे अमाल हाजिर किए जाएंगे और गवाहों को लाया जाएगा, और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले कर दिए जाएंगे, और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। सोचिए ज़रा, क़यामत के दिन अमलनामे मिलेंगे। सवाल कीजिए खुद से, क्या मैं इस अमलनामे को लेने के लिए तैयार हूँ? शर्मिंदगी तो नहीं होगी? देखिए, आज मैं आज़ाद हूँ, जो मर्ज़ी चाहूँ करूँ, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, माई लाइफ माई चॉइस, मैं जो मर्ज़ी करूँ, जो मर्ज़ी खाऊँ, जैसी मर्ज़ी लोगों। ये जो पिछले 5 साल है ना, इसने लोगों को मर्ज़ियाँ सिखा दी, हर नाम पे, जिस्म पे मर्ज़ी, मेरे अकायद पे मर्ज़ी, मैं जिसको मर्ज़ी चूज़ करूँ। इवन लोग अपने माँ बाप की मर्ज़ी नहीं मानना चाहते। आज वेस्ट, आप तो बड़े माशाल्लाह सिक्योर माहौल में बैठे हैं, अल्लाह आप बरकतें दे, आप थोड़ा सा बाहर जाकर देखिए, बच्चे अपने माँ बाप पे मुकदमे कर रहे हैं। आपने हमें पैदा क्यों किया? एक बच्चे ने मुकदमा किया, मेरी मर्ज़ी के बग़ैर आपने मुझे पैदा क्यों किया? और लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि अल्लाह पे मुकदमा करें कि हमने तुझे कब कहा था तू हमें पैदा कर और हम नमाज़ें पढ़ें। ये है ना रब्बुकुम अला। याद रखिए, जितना नफ्स को मोटा करेंगे, जितना सेल्फ कंट्रोल कम होगा, यही होगा। तो आप क्या करें और मैं क्या करें, इसमें अपने बच्चों को कंट्रोल में रख कर पालें। एक दिन उनकी मानी है तो 3 दिन अपनी मनवाएं, एक दिन उनकी पसंद का खाना है तो 3 दिन उनको घर वालों की मर्जी का खिलाइए। ये जो आज एक कल्चर चल पड़ा है ना, जो वो कहे, छोटे छोटे बच्चों को माएँ पूछती, बेटा आप क्या खाएंगे, बेटा आप कौन सी बुक लेंगे, बच्चा क्या चाहेगा, कैंडी, आप दीजिए 100 रियाल बच्चे को, देखिए क्या लेके आता है, कोई काम की चीज़ नहीं लाएगा। तो बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हम कितने भी अक्लमंद हो जाएं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं कितना कुरान पढ़ लूँ, मैं पढ़ा लूँ, लेकिन एक चीज़ में मैं अपने पेरेंट्स से हमेशा पीछे रहूँगी, एज। मैं एज वाइज और एक्सपीरियंस वाइज अपने माँ बाप से आगे नहीं हो सकती, क्योंकि एटलीस्ट भी वो मेरे से 18-20 साल तो पहले ही आए ना दुनिया में। पहला बच्चा अमूमन 18 से 20 साल की उम्र में पैदा होता है ना, अब नहीं होता, पहले होता था। तो आपका बच्चा जो आपसे 18 साल छोटा है, वो कैसे आपके साथ बहस कर सकता है? बात समझ रहे हैं? तो क्या पता चला, मर्जियाँ नहीं है। कुरान सुन्नत पढ़ लें, कुरान को पढ़ेंगे आप सबको, जो हमेशा नूरुल कुरान की दावत किसी फिक की दावत नहीं है, हम आपसे किसी और चीज़ का तकाजा नहीं करते। एक दफ़ा इस कुरान को तो पढ़ो, फातिहा से नाज तक तर्जुमा तो समझो, ये समझ जाओ उसके बाद तुम जो मर्जी करो, दुनिया के जिस बाजार में जाके बच्चे को छोड़ दें। एक दफ़ा फातह से नास कुरान पढ़ा दें, 10 साल के बच्चे को कुरान शुरू कराएं, 15 साल यानी बच्चे की 10वीं बर्थडे पे गिफ्ट दे दें, शौक है ना देने का दे दें, क्या बेटा आज मैं आपको सूरह फातिहा बैठ के सुनाऊंगी और हर रोज़ मैं आपको एक रुकू इस कैसे हल्का हल्का तर्जमे से सिखाऊंगी। कौन सी टीचर रखेंगे, कौन से स्कॉलर, आप है वो माएँ। हमारे सलफ सालीन ने, उनकी माओ ने उनको पढ़ाया, बीवियाँ शौहरों को पढ़ाती थी जब वो शौहर नहीं पढ़े लिखे होते थे, शौहर बीवियों को पढ़ाते थे। अभी 2 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया, मेरी क्लास होती है मंडे को, तो उसमें उनको दिखाया कि एक औरत ने पूरी सहा सित्ता हक महर में अपने शौहर से ली, क्या मुझे ये पढ़ाएंगे। वो पूरी जैसे थाल नहीं सजे हुए शादियों में जाते, किताबें उनको रिबन लगे हुए हैं, वो सारी किताबें मियाँ साहब ने अब उनको पढ़ानी है, नहीं तो हक महर अदा नहीं होना। अब हम कहाँ हैं, हमारा तो इल्म से ताल्लुक ही टूट गया, 4 लफ्ज़ सही नहीं पढ़ने आते, कुरान का तलफ़ुज़ सही नहीं है हमारा। तजवीद और तहफीज़ इस मुल्क में बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आप भी फ़ायदे उठाइए, लेकिन इस पर रुकना नहीं है। तफसीर, तदब्बुर, तज़क्कुर, अपने आप को 3-4 साल के लिए पेश कर दें, बिल्कुल बोनलेस मीट की तरह। आप गोश्त को चॉप करते हैं ना, फिर उसमें सिरका डालते हैं, नमक, ग्राम तो देसी लोग पता नहीं क्या क्या डालते, मत मार देते, अगर जुबान होती मुर्गी की तो चीख चीख के कहती मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हम तो बेचारे नाजुक से फ्रूट के ऊपर भी मिर्च मसाले और चाट मसाले डाल के खाते हैं, तो शुक्र अल्लाह ने बेजुबान चीज़ों को बुलवाना नहीं, वरना क्यामत के दिन बोलती अल्लाह इन्होंने मेरे से वो किया वो किया, मैं क्या बताऊँ जी। मिर्चें डाली फिर उसके बाद जलाया, फिर पता नहीं क्या कुछ किया, फिर उसको खाते हैं तो चटनियों के साथ खाते हैं, तो ठीक है इसमें अगर हलाल है तो ठीक है, लेकिन ला तुल्कु बेईदी को मिला था अहलू का, अल्लाह कहते हैं अपनी जान को हलाकत में ना डालो, हेल्दी खाना खाएं, सेहतमंद खाएं। हर चीज़ घी में डूबी हुई तली हुई खा रहे हैं, फ्राई फ्राई खाने खा रहे हैं, हलाकत है। हर वक्त मीठा खा रहे हैं, ये गुलाब जामुन है ये वो है, भाई ये मीठा है इतना, एक थे तो वो हमारे अंकल हैं तो उनको मीठा बहुत पसंद है, और स्पेशली जब शुगर हो जाती है तो और भी दिल करता है। अब जब उनको कोई कहता कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहते क्या ये आम है, नेचुरल है, नेचुरल शुगर नुकसान नहीं देती, खूब आम खाते। और अगर कभी माशाल्लाह गुलाब जामुन रसगुल्ला मुंह में डालते तो एक तो ऊपर वाले भी नहीं जीने देते ना, वो कहते हैं मीठा खाने से नहीं शुगर होनी, तुम्हारी बातें सुन के होनी है। तो जब उनको मिठाई से रोका जाता तो कहते क्या है पक गई है ना चीनी, तो पक के ठीक हो गई। तो वही बात है ना कि जो दिल चाहता है इंसान वो करता है। तो अपने लिए हमेशा तैयारी करें, क़यामत का दिन होगा, आपका रब आपके सामने होगा और आप उसके सामने अपनी पूरी ज़िंदगी को पेश करेंगे। एक और रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से है, सही मुस्लिम 2940, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सूर फूका जाएगा और जो कोई उसे सुनेगा वो गर्दन उठाकर इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, सूर फूके जाने की आवाज़ सबसे पहले वो शख्स सुनेगा जो अपने ऊँट के हौज़ की मुरम्मत कर रहा होगा। देखिए इतना क्लियर कट पैगाम है कि पहला शख्स भी बता दिया कि जो अपने जानवर के लिए पानी का होस ठीक कर रहा होगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा, फिर तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे और इस बेहोशी से मुराद मौत है, फिर अल्लाह धुंध या शबनम की शक्ल में बारिश नाजिल करेंगे जिसकी बदौलत लोगों के जिस्म कब्रों से उगाएंगे, फिर दोबारा सूर फूका जाएगा तो अचानक तमाम लोग खड़े होकर जिंदा होकर हैरान और परेशान इधर उधर देखने लग जाएंगे, फिर आवाज़ आएगी लोगों अपने रब के हजूर पेश हो जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला है। तो सही मुस्लिम में भी ये रिवायत और मुस्नद अहमद में भी है। तो क्या पता चला इस खास तौर पर दूसरी रिवायत से, क्या पता चला कि सूर 2 दफ़ा फूका जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा का भी एक कॉल है जिससे पता चलता है कि सूर 2 मरतबा फूका जाएगा और इन 2 सूरों के बीच में 40 का फासला होगा, 40 दिन, महीने, साल। अबू हुरैरा कहते मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने सिर्फ 40 सुना। यहाँ से आपको सहाबा की सदाकत भी पता चलती है, 40 के बाद नहीं पता तो साफ कह दिया नहीं पता, तो आप अगर इल्म दे रहे हैं ना, जहाँ आपकी राय ख़त्म हो जाए वहाँ चुप हो जाए, हम अपनी इज्जतें बचाने के लिए पता नहीं क्या कुछ झूठ सच बोल देते हैं। हाँ ऐसे ही होगा मेरा गुमान है, मेरा गुमान कुछ नहीं, आई डोंट नो। इमाम मालिक के पास एक दफ़ा कोई शख्स दूर से आया कि आपसे सवाल जवाब पूछ लूँ और कुछ दीन सीख लूँ, 40 सवाल पूछे और इमाम मालिक का जवाब क्या था, लादरी। आई डोंट नो, आई डोंट नो। हाँ, मोते कहते बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे ये बड़े आलम बनते हैं जी, इनको सवालों के जवाब ही नहीं आते। भाई किसने ये दावा किया? और दीन सवाल जवाब से नहीं आता, ये हमारा कल्चर है, कोई मिलेगा उससे सवाल जवाब कर लेंगे। हाँ, उससे पहले आप वो मौजू सुने हो, इल्म की महफिल में पूरा सबक सुने फिर सवाल करें। यहाँ कोई बात हुई, लेक्चर हुआ, समझ आई, अब उसमें से सवाल कीजिए। अब यहाँ बैठकर आप फिर वही सवाल करें, नेल पॉलिश लगाने से जी हो जाता कि नहीं, औरत ये कर सकती मर्द, उसके लिए पहले आप उस पूरे मौजू को समझिए। तो अमल का नुकता, सवाल भरे सवाल ना पूछे। 90% लोग जो सवाल पूछे उनका अपने से ताल्लुक ही नहीं होता, वो किसी और ने कहे होते और वो खुद कोई नहीं होते उस महफिल में, उन्होंने और भी 10 लोगों को कहा होता जरा ये मेरा मसला पूछना। भाई आप कौन, आप आकर मुझे क्यों पूछती हैं? आप जाइए इल्म की महफिल में, हर शहर में हर मुल्क में लोग मौजूद हैं, आजकल ऑनलाइन पे बहुत कुछ है, तो लिहाजा खाम खा लोगों के सवाल जवाब ले लेके इधर उधर ना फिरा करें। बहरहाल, अब दो की बात तो हुई, तीन भी है, बात कहते हैं चार भी है, लेकिन जितने भी हैं कुछ ने दो को ब्लंड किया, दो तो पक्के हैं ठीक है, और सुर पुकने से इसराफील और इसी तरह के जो बड़े फरिश्ते वो नहीं मरेंगे, फिर इन्हें भी मौत का हुक्म होगा। और इसमें हमने एक टॉपिक इसी सीरीज में किया है, क्या फरिश्तों को मौत आती है, तो उसमें इसका जवाब आप ले लीजिए। अब आप मुझे कहें थोड़ा सा तो बता दीजिए ना, तो मैं नहीं बताऊंगी, जाइए वो लेक्चर सुन ले, उसमें डिटेल से जवाब होगा। थोड़ा बताने में ना गलती होती है, अधूरा इल्म ज़्यादा नुकसान दे। आज हमारे पास अधूरा इल्म है, थोड़ा सा इल्म लेके हम आगे दूसरों को देना शुरू हो जाते हैं, ना इल्म पूरा ना अमल पूरा ना हिकमत है। ये तो ऐसे ही है, अभी दो चार लेसन लिए ड्राइविंग के और गाड़ी चलाने लगे, वो आपको जलाने देंगे अगर जब तक आपको पूरा सर्टिफिकेट ना मिले तो आगे पढ़ाने की कोशिश ना करें। कच्चा पक्का इल्म देकर हमने लोगों का स्टैंडर्ड ही डाउन कर दिया इल्म का। बहरहाल, इसराफील के बाद आगे चलते हैं मलकुल मौत और उनकी जिम्मेदारियां। मलक कहते फरिश्ते को, मौत कहते मौत को, तो मौत का फरिश्ता वो फरिश्ता जिसने अल्लाह ताला ने रूहों को कब्ज करने पे मामूर किया। उर्फ आम में मलकुल मौत फरिश्ते के लिए हमारे कल्चर में लफ्ज इजराइल आता है, लेकिन कुरान और हदीस में ये नाम हमें कहीं भी नहीं दिखता, ठीक है, इजराइल का नाम नहीं दिखता। हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं वामा मलकुल मौतु, मलकुल मौत मौत के फरिश्ते का नाम है, इसकी तफसीलात सही हदीस में नहीं है। हाँ, बस आसार, आसार कहते सहाबा के अकवाल को, जो हदीस नबी तक ना पहुंचे सहाबा तक, या फिर बाद में कुछ और होते हैं, कुछ और असर यानी रिवायात हैं कुछ और बाहर से हैं, तो उसमें इनका नाम इजराइल आता है। वल्लाहु आलम, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा ऐसी बहसों से बचिए, अपना भी और दूसरों का वक्त ज़ाया होने से बचाइए। कुरान पाक की दो आयात ले लीजिए, सूरह सजदा आयत 11, कुल यतवफ़ाकु मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, ए नबी आप कह दीजिए कि तुम्हारी रूहें वो मौत का फरिश्ता कब्ज़ करता है जो तुम पर मुकर्रर किया गया। इससे देखिए कितना क्लियर है मलकुल मौत का लफ्ज़ हमारे सामने, तो पता चला कि जी रूह की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी मलकुल मौत की है। बस आयात में कब्ज़े रूह की निस्बत अल्लाह की तरफ भी है, अब अल्लाह की तरफ होगी, मसलन सूरह ज़ुमर आयत 42, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस अनफुस हीन मौतिहा, लोगों के मरने के वक्त अल्लाह ताला इनकी रूहें कब्ज कर लेते हैं। तो अब अल्लाह ताला खुद करते हैं या फरिश्तों के जरिए कराते हैं, वल्लाहु आलम। हाँ, ये पता चलता है कि मलकुल मौत सिर्फ अकेले ही ये काम नहीं करते, कुछ और फरिश्ते भी करते हैं। इसकी दलील ले लीजिए सूरत अलनाम आयत 61, वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिल अलैकुम हफजा हत्ता इज़ा जाहदकुमुल मौत तवफ्फतहु रुसुलुना वहुम ला युफर्रितून, और वही अपने बंदों पर गालिब और बरतर है और तुम पर निगहदाश्त रखने वाले फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचती है तो हमारे भेजे हुए इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा भी कोताही नहीं करते। खुलासा क्या हुआ इन तीन आयतों का, रूह अल्लाह निकालते हैं, मलकुल मौत भी निकालते हैं, या कई दूसरे भी। बाज़ लोग कहते हैं कि ये मुख्तलिफ़ बातें हो गई, तो इसका जवाब क्या है, पहली तो बात फ़ाइले हकीकी अल्लाह है, रूह को निकालने का असल काम अल्लाह ही करता है। मलकुल मौत की तरफ निस्बत इसलिए है कि जिम्मेदारी उनको मिली है, वो अल्लाह का हुक्म सुन के रूह कब्ज करते हैं, और दूसरों का नाम क्या, क्योंकि वो मलकुल मौत के मुआविनीन है। बात बात है। अब ये मुआविन जो मददगार दो तरह के होते हैं, एक वो जो अहले ईमान की रूह बड़े आराम से निकालते हैं, और दूसरे वो जो के कुफार की रूह बड़ी सख्ती से निकालते हैं। दोनों का तذکرہ किधर है? सूरत नाजियात की बिल्कुल पहली दुआतों में, वह नाजियाती गर्क़ा व नाशिताती नश्ता, डूब कर सख्ती से रूह निकालने वालों की कसम, गिरा खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम। तो क्या पता चला कि मौत का जायका दोनों का मुख्तलिफ है। इस सारे की डिटेल्स हमारी इसी सीरीज में ईमान बिल आखिरा में आएगी, जिसमें यानी आखिरत से पहले चार लेक्चर मौत के हैं। मौत एक अटल हकीकत, हुस्ने खात्मा, बुरी मौत से बचना और मौत का मंजर, ये फोर लेक्चर इसी सीरीज में आप सुन सकते हैं, वहाँ पे अपनी जगह पे इंशाल्लाह इसको आप देखेंगे। तो क्या पता चला, खुलासा सुन ले, एक हदीस सुनाती हूँ जिससे आपको पूरा मंजर समझ आ जाएगा। आप इसको कह सकते हैं आंखों देखा हाल। हज़रत बरा बिन आज़म कहते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। जब हम कब्र के पास पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी किबला रुख हुए, हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। हम सब इतने खामोश थे कि जैसे सरों पर परिंदे हों। नोट कीजिए, अगर कभी अल्लाह रहम करे किसी की डेथ हो तो प्लीज़ वहाँ जाकर बातें ना करें, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्या हुआ, अच्छा कितने बच्चे छोड़े, उधर रिश्ता उसका, ये क्या पैसे दौलत, औरतें वहाँ बैठी हुई जोड़ तोड़ कर रही होती हैं। खामोश, या दुआएं पढ़ें, मरने वाले के लिए दुआ करें, अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू वाली दुआ, अपने लिए दुआ करें। मैयत वाले घर में 3 दिन तक फरिश्ते हर हाल बात पे आमीन कहते हैं, ये भी हमें रिवायात से मिलता है। तो खामोशी थी बिल्कुल। कहते हैं कि अल्लाह के नबी के हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। आपने सर उठाकर 2 या 3 मरतबा आपने फरमाया, अल्लाह ताला से अजाब कब्र से पनाह मांगो। जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत को सुधार रहा होता है तो आसमान से इसके पास फरिश्ते आते हैं, ऐसे रोशन चेहरे वाले फरिश्ते, गोया कि इनके चेहरे सूरज हैं। इनके पास जन्नत से लाया हुआ कफन और जन्नत ही की खुशबू होती है। वो हदे निगाह तक आकर बैठ जाते हैं। आखिर में मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और इसके सर के पास बैठकर फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, और एक रिवायत में आता है इत्मीनान वाली रूह, या तुहन नफ्सुल मुतमईना, अपने परवरदिगार की मग़फ़रत और इनायत के पास पहुँच। फिर वो रूह इस तरह निकलती है। अल्लाह हमारे सब के साथ ऐसा करे, सब सुनने वाले साथी जब भी सुन रहे हैं या बाद में सुनते रहेंगे, अल्लाह सब के लिए ऐसा करे। फरमाया, फिर वो रूह इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मशकीज़े के मुंह से टपकता है। चुनाचे मलकुल मौत उसे ले लेते हैं और आंख छपकने से पहले दूसरे फरिश्ते इनसे वसूल कर लेते हैं। फिर इसे जन्नत से लाए हुए कफन और खुशबू में रख लेते हैं। इससे दुनिया की बेहतरीन खुशबू के लपके उठते हैं। ये कौन सी खुशबू होगी आपको पता? खैर की, नेकियों की। जिस बंदे की जात से जितनी नेकी फैलेगी ना, उतना ज़्यादा उससे अच्छी खुशबू आएगी। अल्लाह हमारे लिए खैर के मामलों पे लब्बैक कहना आसान कर दे। फरिश्ते पूछते हैं, जिधर से भी गुजरते हैं ना, तो फरिश्ते कहते हैं, ये किसकी इतनी अच्छी रूह जा रही है? तो फरिश्ते जवाब देते, ये फलां, ये साहे फलां बिन फलां हैं, और दुनिया में उस बंदे का जो सबसे खूबसूरत नाम था ना, उसके साथ उसको याद करते हैं। फिर वो फरिश्ते आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं। फिर वो इसकी खातिर दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, दरवाज़ा खोल दिया जाता है, आसमानों के दरवाजे हैं। फिर अगले आसमान तक उसके मुकर्रब फरिश्ते होते होते उसको अलविदा कहते हैं, सातों आसमानों के दरवाजे खुलते जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे का नाम आमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में लिख दो, और इसकी रूह को ज़मीन में इसके जिस्म में वापस कर दो। फिर कब्र में इसके पास दो फरिश्ते आते हैं। ये पूरी हदीस मैंने मौत का मंजर जो है ना, जो चौथा लेक्चर बताया, उसमें बयान की है। वहाँ ज़ाहिर टॉपिक ही ये था, तो वहाँ मोर डिटेल्स हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ बैठकर अपने बारे में सोचें, इतने बड़े बड़े घरों में हमें घबराहट होती है, वहाँ क्या होगा? अच्छा हाल है तो कोई फिक्र ना करें, आपकी लग्जरियस कब्र होगी, 5 स्टार से बढ़िया कब्र होगी। खैर, फरिश्ते आते हैं, कहते हैं बैठो इजलिस, फिर पूछते मन रब्बू का तुम्हारा रब कौन है, वो कहते हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। फिर वो कहते हैं माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, वो कहते हैं दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो कहते हैं वो जो आदमी तुम्हारी तरफ मबूस किया गया था उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कहते हैं कि हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इससे सवाल करते हैं कि तुम्हें ये सारा कैसे पता चला, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, तो वह जवाब देता है मैं अल्लाह की किताब पढ़कर आया, ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। गोया कि उसके सारे सवाल दुरुस्त हो गए। ऊपर से एक पुकार आती, मुनादी कॉलर पुकारने वाला आसमान से ऐलान करता है इस बंदे ने सच कहा, इसका ठिकाना जन्नत में बना दो, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ, इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे जन्नत की हवाएं और खुशबुएं इसके पास आने लगती हैं और इसकी कब्र हद-ए निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। अल्लाह आपका मेरा अच्छा इंजाम करे। फिर आपने मज़ीद फरमाया कि उसके पास एक खूबसूरत शक्ल का इंसान आता है जिसके कपड़े भी खूबसूरत, जिससे खुशबू आ रही होती है। वो आकर कहते हैं मैं तुझे एक बड़ी अच्छी खुशखबरी देता हूँ, उस दिन का तुझसे वादा किया गया था। वो कहता है अल्लाह तुम्हें भी खुश खुर्रम रखे। तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा तो कोई अच्छी खबर लाने वाले ही ला सकता है, यानी तुम्हारा चेहरा बड़ा प्यारा है, यकीनन तुम कोई अच्छी खबर लाए हो, ग्लैड टाइडर हो। तो कहते हैं मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ, मैं तुम्हारी नेकियां हूँ। अब अगर नेकियां होंगी तो वहां आएंगी ना। और इसी तरह से फिर वो जन्नत की नेमतों को देखता है तो दरख्वास्त क्या करता है, रब क्यामत जल्द बरपा कर ताकि मैं अपने अहलो याल तक पहुंचूं। अच्छा रिज पेपर दिया हो ना तो रिजल्ट का बड़ा इंतजार होता है, इसके बरक्स पेपर गलत, गाने फिल्में स्टोरियां लिखा है जो होगा देखी जाएगी। अब जब पेपर्स के दिन करीब है तो क्या ख्वाहिश होती है बच्चों की, ऐसे अल्लाह करे जंग लग जाए, सारे पेपर बम में उड़ जाए और हमें बगैर पेपर चेक किए पास कर दें। तो दूसरा मंजर, जब काफिर इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत को सुधार रहा होता है तो आसमान से इसके पास फरिश्ते आते हैं। अल्लाह अकबर, पहले तो दुआ करें कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा ना करे। इनके चेहरे स्याह होते हैं, इनके पास जहन्नुमी टाट होता है, हदे निगाह तक इसके पास बैठ जाते हैं। आखिर में मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, इसके सर के पास बैठकर कहते हैं ए खबीस रूह, अल्लाह ताला की नाराज़गी और गुस्से के पास पहुँचो। फिर इसके जिस्म में दाखिल होकर इस तरह इसकी रूह निकालते हैं। आप तसव्वुर में लाइए सीख, सीख कबाब होते हैं ना, या गोश्त बोटी, जब वो उसकी रूह को निकालते हैं तो गोश्त वाली नोकदार सीख भीगी हुई ऊन से निकाली जाए, यानी उसकी रूह के चीथड़े उड़ जाते हैं, मलकुल मौत उसकी रूह को निकाल लेते हैं। आंख झपकने से पहले दूसरे फरिश्ते उनसे हाथ वरू लेकर उसे टाट में रखते हैं, जूठ चुभने वाला। उस टाट से इतनी बदबू आ रही होती है जैसे जमीनी गले सड़े मुर्दार की। अल्लाह ने करे घर में कोई चूहा मरा हो, उबकाइयाँ आएंगी उस घर में जाते हुए, गंदगी रखी रह जाए और घर बंद कर दें, फिर देखे जब खोलेंगे तो आपका दिल कितना ख़राब होगा। इसलिए अमल की बात सफाई का एहतमाम करना ये भी एक दिन का हिस्सा है। अतहूरु शत्रुल ईमान, अल्लाह हमें सफाई पसंद बना दे। फिर इसके बाद फरिश्ते इस रूह को लेकर ऊपर जाते हैं, फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं ये किसकी खबीस रूह है, तो फरिश्ते इसका बदतरीन किस्म का दुनियावी नाम लेकर बताते हैं ये फलां बिन फलां है। इस तरह वो फरिश्ते आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं। जब इसकी खातिर दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की जाती है तो इन्हें नहीं खोला जाएगा। आप सोचे किसी के घर में जाएं, अगला घर से अंदर देख भी रहा है, आपको पता है अंदर है, और अब टिक 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 नॉक करें और दरवाज़ा नहीं खुल रहा, ये किस चीज़ की अलामत है, बेइज्जती की, शर्मिंदगी की। कुरान क्या कहता है सूरह अल आराफ आयत 40 में, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमलु फी समिल हयात, इनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज ना खोले जाएंगे और इनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। एक मुहावरा था अरबों में कि वो हत्ता यलिजल जमलु फी समिल हयात, क्योंकि इब्तिदा ये नामुमकिन लगता है, तो गोया कि मुराद है कि ऐसे लोगों का जन्नत में जाना नामुमकिन है। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके अमाल को कैद खाने के दफ्तर में लिख दो, जो सबसे निचली जगह पे है और ये बड़ी बुरी है, और उसकी रूह को ऊपर से धड़ से फेंका जाता है। फिर अल्लाह के नबी ने उसके बाद तिलावत की सूरत हज की आयत 31 की, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु अत्तैर औ तहवी बिहि रीहु फी मकानिन सहीक। और जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करे तो गोया वो आसमान से गिर गया, अब या तो इसे परिंदे उचक लेंगे या हवा इसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहाँ इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। नाउज़ बिल्ला, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। दुनिया में तो जो था सो था, कब्र में और आगे हशर में तो कुफार के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। बहरहाल फिर इसकी रूह भी वापस की जाती है जैसे नेकी की जाती है। कब्र में इसके पास दो सख्त मिजाज फरिश्ते आते हैं और वही सवाल करते हैं जो उससे किए थे, मन रब्बू का, मां दीनू का, मन रसूलू का। वो जवाब में इंतहाई परेशानी से कहता है, ला अदरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं खबर, मुझे नहीं पता। तीनों सवालों के जवाब में यही कहते हैं, कहते मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बाज़ रिवायत में यहाँ तक कहते, वो कहता है काश मैं पढ़ता और लिखता तो आज मुझे जवाब आते। सूरह मुल्क की आयत क्या है जो रोज़ रात को पढ़ते होंगे, क्या फरिश्ते पूछते हैं, अलम यातिकुम नज़ीर, कालू बला, आए तो थे पर हमने झुटला दिया। तो गोया के वहाँ जाकर पता चलेगा फेल हो गया। फिर आसमान से एक आवाज़ आती है, ये झूठा है, इसका बिस्तर आग का बना दो, फफरिशू मिनन्नार। फिर इसके बाद जहन्नुम की आग और इसकी लू आती है, इसकी कब्र इस हद तक तंग हो जाती है कि इसकी पसलियाँ यूं, हाथों को अल्लाह के नबी ने यूं करके दिखाया, रिब्स या इधर की पसलियाँ इधर आके एक दूसरे के बीच में जाती हैं, यानी कब्र उसको धंसा देती है। फिर इसके पास एक इंतहाई बदनुमा चेहरे वाला आदमी आता है जिसके कपड़े भी गंदे और बू भी गंदी, सड़ान आ रही है उसमें से। वो आकर कहता है, ये एक तकलीफ दह खबर है, ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। फिर वो मुर्दा को उसे कहता है, अल्लाह तुझे भी तकलीफ दह चीज़ से दो चार करे, तुम हो कौन, ऐसा चेहरा तो कोई बुरी खबर ही ला सकता है। तो वो जवाबन कहता है, मैं तेरा खबीस अमल हूँ, बुरे अमल। तब आप देखिए कि कौन सा अंजाम अच्छा। ये कहता है काश क़यामत ना आए, कभी भी ना आए। ये मुसनद हाकिम में भी, अहमद में भी, कई रिवायात से ये चीज़ हमें मिलती है। तो क्या पता चला कि फरिश्तों का काम अल्लाह ने डेजिग्नेट किया हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत छोटी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। आपका मेरा काम क्या है कि हम इन फरिश्तों पर ईमान लाएं, इनके बारे में सोचें, सुने, समझें, पढ़ें, और इसके बाद फिर हम इनको इंशाल्लाह इनसे सीखेंगे इनके काम करने के तरीके क्या हैं। अभी हमने जितने भी फरिश्ते किए, अगर आप इनके बारे में जज्ब करें। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।